From the Conference Center at Temple Square.
सॉल्ट लेक शहर के टेंपल स्क्वायर के सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर के 178th महासम्मेलन है, जिनके भाषण गिरजाघर के महाअधिकारियों और महा चुने गए हैं। कैसविल ऑफ रोड्सविल के यूटा के ग्रैंड मंडल के द्वारा है। बोनोविल कम्युनिकेशन द्वारा इस प्रसारण का जान सेवा के रूप में उपलब्ध किया गया। इस कार्य के बिना लिखित अनुमति उपस्थित है।
हेनरी
बी आयरिंग गिरजाघर की प्रथम सलाहकार इस सभा का संचालन करेंगे।
We welcome you this afternoon.
इस शाम अंतिम दिनों की संतों की मसीह की गिरजाघर की 178th महासम्मेलन की दूसरी महासभा में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सभा की अध्यक्ष कर रहे हैं, ने कहा है कि मैं ब्रदर हेनरी इस सभा की संचालन करूँ। हम उन सभी को स्वागत करते हैं जो उपस्थित हैं, जो दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के संतान द्वारा भाग ले रहे हैं, और उनका भी जो दुनिया के भिन्न भाग में स्टेक सेंटरों से देख रहे हैं, जहां सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा सम्मेलन पहुंच रहा है। कॉलन पैडॉक की निर्देशन में सभा की संगीत को गेट्सविल और फ्रूट हाइट्स यूटा के प्रमुख गायन मंडली द्वारा प्रस्तुति की जाएगी, जिनके साथ ओगन पर लिंडा मार्गरेट होगी। इस सभा की शुरुआत गायन मंडली इस गाने से द्वारा करेगी, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। फिर 70 के एल्डर जेम्स ई डन द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
Our Heavenly Father,
in these times of uncertainty and commotion,
इस समय जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, हम आभारी हैं कि हम आपके चेलों के सामने बैठे हैं और सुन रहे हैं उनके बातों को. हम आभारी हैं कि यीशु मसीह की सच्चाई हमारे पास है. हम आभारी हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए जो इस सम्मेलन में आया है, और हम बच्चों के लिए आभारी हैं. पिता परमेश्वर, आपकी मदद चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि हम उनको पढ़ा सकें और उसकी उन लोगों को मदद कर सकें. इस सम्मेलन में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम सच्चाई जान सके. आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जानकर कि हम दुनिया में सब भाई और बहन हैं और आप हम सबसे प्रेम करते हैं, कि ये बात हम हमेशा याद रखें और हम एक दूसरे से प्यार करें. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि जो कोई यहाँ पर हमसे सिखलाएंगे, कि आप उनके साथ रहे, आपके पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, कि हम उसे समझ सके. और इसे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन.
President Monson has
Monson ने कहा कि मैं अब पुष्टिकरण के लिए गिरजाघर के महा अधिकारियों, क्षेत्रों और महासंदेशों का प्रस्तुत करूं. गाया मंडली फिर गाएगी द लाइट डिवाइन. गाने के बाद में 12 देवता के परिषद के एल्डर जोसेफ बी विदलिन और एल्डर जेफरी आर होलन हमें संबोधित करेंगे. ये प्रस्तुत किया गया है कि हम थॉमस एस मॉन्सन को एक भविष्यवक्ता, पैगंबर और ईश्वरी वचन प्रकट करने वाले अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर के प्रधान के रूप में, हेनरी बेनियरिंग इस प्रथम अधिकार और प्रथम सलाहकार के रूप में, डिटिया फेडरिकोटोफ को प्रथम दूसरे सलाहकार में जो सहमत है प्रकट करें, जो असम्मत है वो प्रकट करें. ये प्रस्तावित किया गया है कि हम वोइट केनेथ पेका को 12 देवतों की परिषद के आदेश के रूप में और परिषद के सदस्य में रूप में वोइट के पेका, एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डेलन ए चॉक्स, एम रसल बैलेट, जोसेफ बी विदलिंग, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quentin L. Cook, and D. Todd Christopherson ki prusti kare, jo sehmat hai kripya prakat kariye, jo virodh karte hain prakat kariye. ये प्रस्तावित की गई है कि हम प्रथम अधिकारियों और सलाहकारों और 12 देवताओं को भविष्यवक्ताओं, पैगंबर और ईश्वरी वचन प्रकट करने वाले, जो सहमत है कृपा प्रकट कीजिए, जो असहमत है अगर कोई है प्रकट करे. ये प्रस्तावित किया जाता है कि हम एल्डर एल जी टिंजी को 70 के प्रस्तों की आदेश कि सदे और एल्डर एल जी टिंगी और सेल्डन एफ चाइल्ड को 70 के प्रधान परिषद को संदेशों के रूप में मुक्त किया जाए और उन्हें महाअधिकारियों के प्रस्तुति के रूप में नियुक्त किया जाए. ये भी हम प्रस्तुत कर गया है कि हम जेरल्ड एम लंड और रॉबर्ट आर 70 के दूसरे प्रकट किया है, आभारी है करने की कृपया प्रकट करें. ये प्रस्तावित किया जाता है कि एल्डर जो रोचेस और एल्डर टी लेमा स्लेट को 17 के रूप में मुक्त किया जाता है नवंबर फेस्ट 2000 से लागू होगा। इन भातरों के लिए जो आभार अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कृपया प्रगत कीजिए। यह प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर जे जेंसन और 70 की प्रसिद्ध की अध्यक्षा की सदस्य के रूप में पुष्टि करें, जो सभी सहमत है प्रकट करें, जो असहमत है अगर कोई भी। यह प्रस्तुत किया गया है कि हम महाधिकारों सत्रों और सहायक प्रोषित करें, जैसे भी नियुक्त है, जो सहमत है कृपया प्रकट करिए, जो कोई असम्मत है प्रकट करें। प्रधान मॉन्सर, अब तक जैसे मैं समर्थ था ध्यान दिया, सम्मेलन केंद्र में मतदान एकमत था। धन्यवाद है भाइयों बहनों, तुम्हारे पुष्टिकरण में, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे श्रद्धा और प्रार्थनाओं के लिए।
When I was young,
जवानी में मैं खेलकूद में भाग लेता था और मेरी यादें उन दिनों से भरी हैं, पर सभी अच्छा नहीं है। मुझे याद है कि एक दिन मेरी फुटबॉल टीम एक कहीं कठिन खेल में हार गया था। मैं निराश हो गया था। मेरी माता वहाँ थी, उसने मेरी दुखद कहानी सुनी। उसने मुझसे सिखलाया कि मैं खुद पर और दूसरों पर विश्वास रखूं और अपने दुर्भाग्यों के लिए दूसरों को दोषी ना ठहराऊं और कार्य में अपनी पूरी कोशिश लगाऊं। जब हम असफल होते थे, मेरी माँ चाहती थी कि हम खुद आगे बढ़ें। मेरी माता की सलाह बहुत अच्छी होती थी। वो मेरे साथ मेरे पूर्ण जीवन भर रही। जोसेफ, उसने कहा, होनी चाहे कुछ हो, उसे प्रेम करो। मैं उस सलाह को हमेशा याद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसका मतलब था कि प्रत्येक जीवन अच्छे और बुरे समय होते हैं और ऐसे समय लगते हैं कि दुनिया में कोई खुशियां नहीं है। फिर भी निराश और विपत्ति के बावजूद जो बहुत खुश हैं, उन्हें कठिन समय से सीखना है ताकि परिणाम स्वरूप मजबूत, बुद्धिमान और खुश हो। कुछ सोचते होंगे कि महाअधिकार कष्ट, पीड़ा या दुख अनुभव नहीं करते, जबकि इस मंच पर प्रत्येक पुरुष और महिला और बहुत और आनंद का अनुभव किया है। प्रत्येक ने निराश, दुख और होने का अनुभव भी किया है। मेरे लिए प्रभु ने स्वर्ग की झरोखों को खोल दी है और मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दिए जिनका मैं बतला नहीं सकता। फिर भी सभी अन्य लोगों की तरह मेरे जीवन में ऐसे समय थे जब ऐसा लगा कि मेरे हृदय के बोझ इतना ज़्यादा था जिससे मैं सह नहीं सकता था। उस समय मैं अपनी युवकता की कोमल दिनों पर जाता हूँ, जब फुटबॉल खेल की समाप्ति में बहुत दुख आए थे। कितना कम मैं जानता था कि मेरे भविष्य में मेरे लिए क्या लाएगा, पर जब मैं दुख और तकलीफ की अवस्थाओं से गुजरा, मेरी माता के शब्द बहुत मेरे पास आए, होनी चाहे कुछ भी हो, उससे प्रेम करो। कैसे हम उन दिनों से स्नेह करें जो दुख से भरे होते हैं? हम नहीं कर सकते, उस समय नहीं। मैं नहीं सोचता कि मेरी माता सुझाव दे रही थी कि हम निराश प्राप्त करें, पर मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से हम विपत्ति के प्रति प्रतिक्रिया दिखलाते हैं, वो मुख्य भाग हो सकता है। अगर हम पवित्र विपत्तियों का सामना बुद्धिमानी से करेंगे, हमारे कठिन समय हमारे महान विषय होने के समय हो सकते हैं। कई वर्षों में मैंने कुछ चीज़ों को सीखा जिन्होंने मुझे परीक्षा और मुसीबत के समय मदद की है। इसमें से कुछ मैं बतलाना चाहता हूँ। क्या तुमने एक गुस्से भरे गाड़ी चलाने को देखा जो कोई और गलती करता है और वो प्रतिक्रिया दिखलाता है, जैसे कि उस व्यक्ति ने उसके सम्मान परिवार कुत्ते और आदम से लेकर उस तक के पर्वजों का अपमान किया हो? इस तरह के समय के लिए समाधान है हंसना सीखना। मुझे याद है, मैं अपने बच्चों को लॉस एंजेलिस के जाने के लिए गाड़ी में बिठा रहा था। हम कम से कम 9 लोग और हम स्थिर रूप से कोटे नहीं। गुस्से की जगह हमने हंसा। प्रत्येक बार हम गलत और हम और भी हंसे। खोना असम्य घटना नहीं थी हमारे लिए। एक बार मुझे याद है, मेरी बेटी उसके साथ गई जिससे वो जानती नहीं थी। वो तैयार हुई और अपने मिलने वाले का इंतजार कर रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी, अंदर एक पुरुष ने प्रवेश किया जो थोड़ा बूढ़ा था। पर उसने सुशीद बनने की कोशिश की थी। उसने उसका परिचय मुझसे और मेरी पत्नी और अन्य बच्चों से किया। फिर उसने अपना कोट पहना और दरवाज़ा से बाहर चला गया। हमने देखा जब वो गाड़ी में बैठा, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। अंत में हमारी बेटी बाहर निकली और शर्माई हुई घर के अंदर चली गई। जो पुरुष आया हुआ था वो वास्तव में हमारी एक दूसरी बेटी को लेने के लिए आया था, जो राजी हुई थी उसके लिए उसकी पत्नी के लिए उनके बच्चों को देख रहे थे। हमने खूब हंसा उस घटना पर, वास्तव में हमने बहुत हंसा। बाद में जब हमारी बेटी से मिलने वाला आया, मैं उनसे मिलना नहीं आ सका क्योंकि मैं रसोई घर में था। अब मैं जान सका कि हमारी बेटी अपमानित हुई और शर्मा गई थी, पर उसने भी हमारे साथ हंसा। परिणाम स्वरूप हम आज भी उस पर हंसते हैं। अगली बार अगर तुम्हें कष्ट सहना पड़े, तुम शायद उसकी जगह हंसने की कोशिश करो। वो तुम्हारे जीवन को बढ़ाएंगे और जो तुम्हारे आसपास हैं उनके जीवन और भी अंधक होंगे। दूसरी चीज हम कर सकते हैं वो आनंद क्या है उसे ढूंढे। जब विपत्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, तुम शायद अकेले कष्ट महसूस करोगे। तुम अपना सिर हिलाओगे और सोचोगे, क्या ये मेरे साथ हुआ? पर दुख हम प्रत्येक के पास आता है, अभी नहीं तो बाद में। सभी को दुख अनुभव कराता है, किसी को उसे माफी नहीं है। निराश, कष्ट और दुख से समय सहने करना सीखना प्रायोगिक चीजें हैं जिन्हें हम जीवन के सीखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत कष्ट उठाया था, वो हमारे कष्ट को समझते हैं, वो हमारे दुख को समझते हैं। इसलिए हम कठिन चीज़ों का अनुभव करें ताकि हमारे पास भी दूसरों के लिए अधिक दया और समझ हो। उद्धारकर्ता के प्रेरित शब्दों को याद कीजिए जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के लिए था, जब वो अपने साथियों के साथ लिबर्टी कारागार की धुंधधारी में अपने साथियों के साथ कष्ट उठा रहे थे। मेरे पुत्र, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारी विपत्ति और तुम्हारे कष्ट थोड़े समय के लिए होगी, और फिर अगर तुम सहेगे, ईश्वर तुम्हारे आनंद उन्नत करेंगे। तुम अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। प्रत्येक तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है क्षतिपूर्ण के सिद्धांत को समझना। प्रत्येक क्षति के लिए प्रभु क्षतिपूर्ति करते हैं जो उन लोगों को से लिया जाता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। उन्हें उनके अपने तरीके से उन्हें लौटा दिया जाता है, जबकि वो उस समय नहीं आएगा जिस समय हमारी इच्छा होती है। सुसमाचार के एक आशीर्वाद है वो ज्ञान कि जब मौत का पर्दा संकेत करेगा हमारे मरणशील जीवनों के अंत होने के लिए। क्योंकि स्वर्ग पिता दयालु है, क्षतिपूर्ण के सिद्धांत की विजय होगी। मैंने इसे अपने जीवन में देखा है। मेरी नाती जोसेफ को ऑटिज्म है। उनके माता पिता के लिए ये दुखद विषय है जब वो उसके कष्ट के उलझाव का सामना करना पड़ता है। वो जानते थे कि जोसेफ संभावता अन्य बच्चों की तरह कभी नहीं रह सकेंगे। वो समझते थे कि उसका क्या मतलब होगा जोसेफ और परिवार के लिए भी। उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया कि खेल कूद में भाग ले। जब उसने पहली बार बेसबॉल खेलने शुरू किया, वो आउटफील्ड में था, पर मैं सोचता कि उसने जरूरत नहीं समझा लूज बॉल्स के पीछे दौड़ने की। उसने और भी कार्यकुशल से खेल को खेलना सोचा। जब गेंद उसकी दिशा में आई, जोसेफ उसे सिर्फ देखता ही रहा। फिर एक और बेसबॉल अपनी जेब से निकाला और उसे पिचर के पास फेंका। जो भी उनके परिवार हो को हुई जोसेफ का पालन पोषण करते समय जो तैयार उन्होंने किया, उन्हें 10 गुना क्षतिपूर्ति की गई। उन्होंने परिवार, पड़ोसी और दूसरों की प्रत्यक्ष उदारता और दया देखी। वो साथ में हरदिश हुए जब जोसेफ ने प्रगति की। उसकी अच्छाई पर वो आश्चर्य हुए। चौथी चीज जो हम कर सकते हैं, वो स्वर्ग पिता और उन पर यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखना। ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथी, मददगार और पक्षमर्दक है। वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। वो चाहते हैं कि हम कामयाब हो। अगर हम अपना भाग करेंगे, वो अपना भाग करेगा। जो सभी चीज़ों से नीचे, वो हमें दिलासा देंगे और हमारा समर्थन करेंगे। हमारी एक बेटी एक शिशु को जान देने के बाद बहुत बीमार हो गई थी। एक बार मैंने उससे कहा कि इस कष्ट के साथ शायद उसे उसके बाकी जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। सर, एक सुबह मुझे याद है, मैंने एक कार्ड निकाला और अपने टाइपराइटर में डाल रहा था। उनमें ये सब मैंने लिखा। सरल रहस्य ये है, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपनी और से पूरी कोशिश करो, फिर बाकी उन पर छोड़ दो। उसने अपना विश्वास उस पर रखा, पर उसके कष्ट खत्म नहीं हुआ। जो कोई वर्षों तक वो कष्ट में थी, पर थोड़े समय में प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया। अंत में वो चंगा हो गई। ये जानते हुए कि ये बेटी, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर उसे आश्रम नहीं मिलती, फिर भी अपने स्वर्ग पिता पर विश्वास करती है। मैं अभी भी उसकी दी हुई सलाह को याद करता हूँ जिसने उसने दी थी। मैं जानता हूँ कि क्यों सभी चीज़ों में विरोध होता है। जब हम मजाक को ढूंढे, आनंद दृश्य को ढूंढे, क्षतिपूर्ण को सिद्धांत को समझे और स्वर्ग पिता के करीब जाए, हम कठिनाई और मुसीबत सहेंगे। हम इस तरह अपनी मेरी माता पिता सह सकते हैं। ये मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
जब एडम ने अपनी इच्छा के
There is no man more beloved than Joseph Bittner Werthlund.
Joseph Bittner Werthlund के हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं कि वो जो प्रचार करते हैं। जब एडम और ईव ने अपनी इच्छा के मनशाली में प्रवेश किया, वो जानते थे कि इस दुनिया में सभी प्रकार के घटने और घटनाद्वार पैदा और समान रहेंगे। शायद उनके चेतावनी पोत पर फिर भी वो कठिनाई और खतरा नहीं थे जो उन्होंने सेना पर ये वास्तव से ईश्वर के दूर हो जाएंगे, उससे अलग जाने जिनके साथ उन्होंने चले और बांटे थे, जिन्होंने उन्हें सामने सामने सलाह दी है। इस जानकर वे बाद में जैसे स्मृति के कहता है, उन्होंने उनके देखा नहीं क्योंकि उन्हें उनकी उपस्थिति से अलग कर दिया गया था। उन सभी चेतावनी में निश्चित ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता होगी। पर ईश्वर जानते थे कि कौन चेतावनियों के सामना उनको करना और वो व्यक्ति जानते थे कि कितने अकेलापन संकट वो महसूस करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही वादे पर मनशाली परिवार से उनके प्रार्थना को सुना और उन्हें सलाह देने के भेजा। पर विशेष जरूरत के सामने में उन्होंने फरिश्तों को भेजा, दिव्य दूध और बच्चों के आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने ये आश्वासन देने के लिए कि स्वर्ग बहुत करीब है और उनकी मदद हमेशा बहुत करीब है। वास्तव में थोड़े समय में जब एडम और रवि ने अपने आप को निर्जन और दुखतर दुनिया में पाया, एक फरिश्ता उनके सामने आया जिन्होंने उनके त्याग का मतलब बताया, वाले वादे किए मुक्तिदाता और प्रायश्चित करने के भूमिका के बारे में बताया। जब उद्धारकर्ता के आगमन के समय करीब आया, एक फरिश्ता को भेजा गया मेरी को घोषित करने के लिए कि वो ईश्वर के पुत्र के माता बनेगी। फिर कई फरिश्तों को आदेश दिया गया कि उस रात आगे जब यीशु का जन्म होगा, उसके थोड़े समय बाद फिर एक फरिश्ता जोसेफ को घोषित करेगा कि नेवत कतरे में है और परिवार को सुरक्षित रूप में इज्जत भाग जाना पाए। जब लौटना सुरक्षित था, एक फरिश्ता ने परिवार को जानकारी दी कि तेनाओ अपने पैतृक देश थे। शुरू से लेकर समय में ईश्वर ने फरिश्तों को अपने दूतों पर रूप में इस्तेमाल किया है ताकि वो अपने बच्चों के लिए प्यार और परिवार प्रदान कर सके। इस स्थान के लिए धर्मशास्त्रों के उपारी प्रशिक्षा के भी मौका नहीं देता है। ये हमारा अपना अंतिम दिन इतिहास जो फरिश्तों के वितरण के बारे में है प्रवृत्त और करते हैं। कभी कभी वो दिखलाती देती है, पर दिखलाई दे या नहीं वो हमेशा करीब है। कभी कभी उनका कार्य बहुत भद्य होता है और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी संदेश और भी नीच होते हैं। कभी कभी फरिश्तों का उद्देश्य चेतावनी दिया है, पर बुधा दिलासा देना, कृपालु दया देना, कहीं समय में मार्गदर्शन पाना। जब लेही के सपने में उन्होंने अपने आप को एक दौराना स्थान पर पाया, एक अंधकारपूर्ण घोर निर्जन भूमि, जब उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने एक फरिश्ता मिला, एक पुरुष सफेद लपटाना पड़े हुए थे। उसने मुझे बताया कि लेही न कहा और अपने पीछे जाने को कहा। लेही उसके साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और मैं मुक्ति के मार्ग पर। जीवन की यात्रा में हम सभी अंधकार और ढूंढ स्थान, दुख और भय में निश्चय के भक्ति में समय बिताते हैं। हमारा वृतांत समय पर की समय में उर्जन समय और घोर संकट की हुआ है। यह व्यक्तिगत और परिवार चिंताओं का अनुवाद करता है। हमारे पृथ्वी की अंतिम दिनों भविष्यता के बारे में भी, इससे और भी गंभीर और कभी कभी उनसे संबोधित वो अनैतिक नीति और अंधेयक संतान के विषय में, जो बड़ी और छोटी जनसंख्याओं में घर पर और विदेश में दिखलाती है। एडम और ईव की मदद के लिए, भविष्यता के मदद के लिए और वास्तव में दुनिया के उद्धारकर्ता की मदद करने के लिए। मैथ्यू अपने समाचार में अभिलिखित करते हैं और संतान की निरंजन प्रशंसा करते हैं। लोभने की कोशिश की, फरिश्ते आए और उनकी सेवा की। ईश्वर के पुत्र खुद ईश्वर उन्होंने अपनी मरणशाली निवास में भी स्वर्ग दिलासा की जरूरत थी और समय के अंत तक धार्मिक के लिए बहुत सेवा रहे। जैसे मोमन ने अपने पुत्र मोरनाय से कहा, जो एक दिन फरिश्ता बनते, क्या चमत्कार के दिन बीत गए हैं?
As Mormon said to his son Moroni, who would one day be an angel, has the day.
ये मानव वंश के सामने स्वर्गदूतों का आना अब हो गए हैं, या उनसे पवित्र आत्मा की शक्ति को उनसे रोक रखा है? वे अंतकाल तक की धरती है। ये जब धरती एक भाई व्यक्ति बचाएंगे लेकिन रहेंगे, तब वो उस शक्ति को रोक रहेंगे? सुनो मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि कारण ये स्वर्गदूत लोगों के उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं, क्योंकि सुनो वे उसके अंतिम उनके अनुसार ही उपदेश देते हुए विश्वास और विवेक की ओर पहले द्वारा देवता की दिखलाते हैं। मैं सभी से कहता हूँ जो मेरे बात सुन सकते हैं, दिल से विश्वास कीजिए और याद रखिए कि प्रभु ने कहा है कि वो हमारे युद्ध, हमारे बच्चों के युद्ध और हमारे बच्चों के युद्ध लड़ेंगे। ये तरह की रक्षा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? हमें परिश्रम से ढूंढना है, हमें प्रार्थना करना है और विश्वास करना है, तब अच्छाई के लिए सभी चीजों साथ में काम करेंगे। अगर हम धार्मिक रहेंगे और उस वादे को याद करेंगे तो हमें किएंगे अंतिम दिन डरना और भयभीत होने के समय नहीं है। वो समय आए अपने वादों पर विश्वास करने और उन्हें याद करने का। मैं यहाँ स्वर्ग मदद के बारे में कह रहा हूँ जो फरिश्ते भेज जाते हैं हमें जरूरत समय आशीर्वाद देना है। पर जब हम उसके बारे में बात करते हैं जो ईश्वर के हाथ के औजार है, हम ये दिलाए जाते हैं कि सभी फरिश्ते पर्दे के उस पे नहीं है, उनमें से कुछ साथ हम चल रहे हैं, बातें करते हैं यही अभी एनपर्क से, उनमें कुछ हमारे पड़ोस में रहते हैं। वास्तव में स्वर्ग उस करीब नहीं लगता जब हम देखते हैं ईश्वर के प्यारे लोगों के दयालुत्व और श्रद्धा में प्रगत है इतना अच्छा और इतना पवित्र कि देवता समान ही सिर्फ वो शब्द है जो दिमाग में आता है। उस शब्दों के मैं तुम्हारे साथ अपने दोस्त और BYU के सेप्ति स्वर्ग ग्लिन डी बारस द्वारा एक विरन बनते, मैं उसकी पत्नी मैरिलिन और उसकी परिवार की अनुमति से देता हूँ। एक बड़े आइडाहो खेत में उसके बचपन के समय ब्रता बारस अपने रात के कार्य पर कहा, जो दोनों के समय गायों के इकट्ठा करना था, क्योंकि गाय जिस खेत में चरती थी उसके आपस बहुत खतरा फैलती थी। बारस परिवार का सुनिश्चित नियम के गए थे और पीछे नहीं जाना था, सांस कर नहीं पा रही थी, उन्हें हमेशा घर लौटना था और बड़े लोगों की सहायता लेनी थी। They were always to return home and seek mature help. एक शनिवार उसने सातवें जन्मदिन के बाद भारतवर्ष माता पिता ने परिवार से वादा किया कि उन्होंने चलचित्र देखना और जाएगा अगर समय पर काम कर दिया जाएगा। पर जब छोटे क्लिन चार वाली जगह आए जिन गायों को वो ढूंढ रहे थे, उन्हें नदी पार कर रही थी बड़ हो सके, ये जानते हुए कि चलत्रिच जाने की उसकी दोबारा रात संकट में थी, उसने गायों के पीछे जाने का निर्णय किया। जब 7 वर्ष ने अपने भूड़े घोड़े बैनर को आगा उस दंड तेज नदी में, घोड़े का सिर बहुत कम ही पानी के ऊपर था, अगर एक बालक घोड़े पर बैठता तो वह सुरक्षित होता, पर भारत बेरस कोमल उम्र में धारा पूरी तरह उस धड़क रही थी, पर कुछ बार घोड़ा छपटा, जैसे क्लिंटर का सिर उठाया हुआ ही वह सांस ले सके। ये मैं भ्राता बेरस का शब्दों का दौरान है। जब अंत में बैनर दूसरे तट पर तोड़ा, मैं जान सका कि मेरे जीवन बहुत खतरे में था और मैंने भयंकर काम किया, जानते हुए कि भी मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। मुझे लगा कि मैं अपने आप को सिर्फ तब मुक्त कर सकूंगा जब मैं गांव को सुरक्षित रूप में घर लौटाऊंगा, तब शायद मेरे पिता मुझे माफ कर देगा। पर शाम हो चुकी थी और मैं सुनिश्चित रूप से नहीं जानता था कि मैं कहाँ था। निराशा मुझे थी, मांग भार था, खोया और डरा हुआ। मैं बड़े बैनर से उतरा, उसके पैर के पास गिरा और रोना शुरू किया। रोने के पीछे मैंने प्रार्थना किया की कोशिश की अपने स्वर्ग के पिता से बारंबार द्वारा, मुझसे गलती हुआ, मुझसे माफ कीजिए, मुझसे गलती हुआ, मुझसे माफ कीजिए। मैं देर तक प्रार्थना करता रहा। जब अंत में मुझे ऊपर देखा तो मैंने अपने आंसुओं से देखा कि सफेद कपड़े पोंछे हुए एक व्यक्ति मेरे ओर चल रहा था। अंधकार में मैं सुनिश्चित था कि वो फरिश्ता था जो मेरे प्रार्थनाओं का जवाब था। मैं वहां से हिला नहीं, ये कुछ कहा नहीं जब वह व्यक्ति आ रहा था। जो मैंने देखा उसे मैं बहुत भाव हुआ। क्या प्रभु वास्तव में मेरे पास फरिश्ता भेजेंगे जो आज्ञाकारी नहीं था? फिर एक प्रश्चित आवाज ने कहा, पुत्र मैंने तुम्हें ढूंढ रहा था। अंधकार में मैंने अपने पिता की आवाज को पहचाना लिया और उसके पहले हुई भौजाओं की ओर ढूंढा। उसने मुझे पकड़ा लिया और धीरे से कहा, मैं चिंतित था, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया। मैंने कोशिश की बदलाना कि कितना ढूंढते मैं था, पर मेरी धरती हुई जेब से सिर्फ कुछ शब्द निकले, धन्यवाद, अंधार, भयभीत, अकेले। उस रात भर मैं जान सका जब मैं चराने वाली जगह से नहीं लौटा, मेरे पिता मेरे तलाश करता हुआ आया। जब मैं ना गई मिली, वो जान गया था कि मैं नदी पर चुका हूँ और खतरे में था, क्योंकि अंधकार था और समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसने अंदर के थेमल कपड़े को छोड़कर बाकी कपड़े उतारे, अपनी गार्डन में अपनी जूते बांधे और उसे घटनाक नदी पर किया उस पुत्र को बचाने के लिए जो आज्ञाकारी नहीं था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फरिश्तों की गवाही देता हूँ, दोनों स्वर्ग और मनुष्य की मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और वो चेतावनी का हमें सामना करता हुआ उन्होंने सहायता प्रार्थना करता है। ये अंतकाल तक, अर्थात जबकि धरती है और धरती पर अभी व्यक्ति बचा है, वे बचा रहेगा तक बचा जाएगा। अवर्षण पर विश्वासी या व्यक्तिक हम महसूस करेंगे हम ईश्वर से दूर हैं। भूड़ा हो दुख हमारा बनाया वो सकता है, पर हम सभी के पिता देख रहे हैं और मदद करेगा। और हमेशा वो फरिश्ते हैं जो हमारे पास आते हैं, दिखाई देते और नहीं भी, प्राश्चित और अप्राश्चित, मरणशील और अमर,
known and unknown, mortal and immortal.
प्रभु के वादा पर हमारा तरफ से विश्वास करें और उनके लिए भी भारी है रहे। वो हमारी समय आएगा, वो हमारी दहने बाय रहेंगे और उन्हें पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, उन्हें फरिश्ते हमारे आपस रहेंगे। वो फरिश्ते के लिए प्रार्थना हमें परिवार में, वो हमारी सेवा करेंगे और हमारे फरिश्ते तुम्हारे सामने रहेंगे, तुम्हें ऊपर उठाएंगे। शायद फिर हम ईश्वर के दूत के दूत बन सकते हैं, अंधकार, भयभीत,
perhaps then
tab hum
we can be emissaries sent from God
parmeshwar ke tarah swarg daud
perhaps a primary child
ban sakte hain
is crying darkness a
नदी अकेले मैं इसलिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन
The choir and the congregation will now sing.
Gaan manli ab subha gaegi teach.
Because of the wonderful testimony of
Elder Holland ko diya gaya hai. Teach me to walk in the light. Gaane ke sampati par Sattar ki Elder Gerald Kors and Elder Corbridge 70 ka baat karenge. Unke baad. बारह देवता के परिषद के एल्डर डी टॉफ्स क्रिस्टेंसन भाषण देंगे टीच मी टू वॉक इन द लाइट
This is the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
कई बार माता पिता अपने बच्चों के उत्तरों से चकित रह जाते हैं एक शाम जब मेरी पत्नी और मैं नहीं थे हमारे बच्चों की देखभाल करने वाली उनसे ये सवाल किया पर तुम्हारे और मेरे धर्म में अंतर क्या है मेरी 8 साल की बेटी ने उत्तर दिया वो लगभग एक जैसे हैं सिवाय हम तुम से कुछ ज्यादा जानते हैं हमारे बच्चों की देखभाल करने वाली का अपमान ना करती हुई वो अपने शब्दों में चाहते हुए बतलाना चाहती थी कि लैटरडे सेंट्स कितना महत्व देते हैं ज्ञान को ढूंढने के लिए जोसेफ स्मिथ ने घोषणा की अज्ञान में किसी मनुष्य को बचाना संभव है उन्होंने कहा ज्ञान का सिद्धांत उद्धार का सिद्धांत है और सभी लोग बचने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं वो दोषी ठहराए जाएंगे इस ज्ञान का आधार है भगवान और ईसा मसीह और उद्धार की योजना के स्वभाव को समझने की उन्होंने तैयारी की है ताकि हमें मौका मिले उनकी उपस्थिति में लौटने के लिए और इससे अनंत जीवन के बारे में पता चलता है। ज्ञान के सिद्धांत को अक्सर गलत ढंग से बताया गया है। भगवान की महिमा ज्ञान है। उनका ज्ञान हमारे ज्ञान से कई गुना ज्यादा है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए बहुत चतुर होने चाहिए, लेकिन भगवान हमेशा प्राप्त किए जा सकते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए वे अपने आप को एक छोटे बच्चे की भाषा और योग्यता के अनुकूल बनाएंगे। भगवान अन्यायी होंगे अगर वे केवल चतुर लोगों को ही प्राप्त होंगे। दिव्य सच्चाई उनकी सभी बच्चों को बराबर से समझ आ सकती है। एक बार भी इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं, इससे इसी की शक्ति का पता चलता है। प्रधान जॉन टेलर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी कठिन सिद्धांत को लेकर सरल बना सकता है, इससे उसकी बुद्धि के बारे में पता चलता है और इसकी पवित्रता और सरलता से पवित्र आत्मा प्रवेश कर सकती है। यीशु ने कई बार अपनी सीखों की सरलता को फरीसीज के कठिन ज्ञान से तुलना की। यीशु कठिन सवालों के उत्तर हमेशा सरलता से देते थे और उनके जवाब हमेशा सरल रहते थे। एक दिन यीशु के चेलों ने उनसे पूछा, भगवान के राज्य में सबसे महान कौन है? यीशु ने एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, जब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता और तुम एक छोटे बच्चे की तरह नहीं बनते, तब तक तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। यीशु ने कहा, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अपने ये बातें चतुर लोगों से छुपा रखी हैं और छोटे बच्चों को बताई हैं। संभवतः बाइबल किसी और किताब से ज्यादा बार चर्चा में रही है, फिर भी कोई बच्चा जो इसे पहली बार पढ़ रहा है वो उसे उतनी अच्छी तरह से समझ सकता है जितना कि कोई उसका ज्ञाता। 8 साल की उम्र में एक बच्चा बैप्टाइज होने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इन बातों को समझ सकता है और भगवान के साथ कवेनेंट बना सकता है। यीशु के बापटिज्म के बारे में पढ़ने से बच्चा क्या समझता है? यीशु का बापटिज्म जॉन द बैप्टिस्ट ने जॉर्डन रिवर में किया था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया एक कबूतर के रूप में। एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैंने तुमसे प्रसन्न हूँ। एक बच्चा गॉडहेड को समझ सकता है। तीन अलग प्राणी संपूर्ण एकता में, भगवान जो पिता हैं, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। सीधे और सरल सिद्धांतों को ना अपनाना कई अपोस्टेसीज का कारण रहा है। बुक ऑफ मॉर्मन में प्रॉफिट जोसेफ ने कहा, सरल बातों की बुराई करना, प्रॉफिट्स को मारना, उन चीजों को पाना चाहते थे जो वे समझ नहीं पाते थे। उनके ज्ञान के कारण वो गिरते हैं, उनके अज्ञान के कारण वो गिरते हैं। भगवान ने उन्हें सरल बातें उनसे ले ली और उन्हें कठिन बातें दी क्योंकि वो उन्हें चाहते थे। कभी कभी हम सोच सकते हैं ये बातें बहुत आसान हैं, जैसे नामन जो अपने गर्व के कारण अलीशा की सलाह को अपनाना नहीं चाहा, जो उसके विचार में बहुत सरल था। उसके दासों ने उसे दिखाया, हमारे पिता, यदि प्रॉफिट तुम्हें कोई भारी काम देंगे तो क्या तुम उसको ना करते? और उसका क्या जवाब उन्होंने कहा, धो और साफ करो। तब वो गए और जॉर्डन रिवर में 7 बार डुबकी मारी और वो साफ हो गए। उनका शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी साफ हुई, क्योंकि उन्होंने इन बातों को विनम्रता से माना। छोटे बच्चों के पास सीखने का बढ़िया स्वभाव होता है। उनके पास पूरा विश्वास, शुद्ध आत्मा और विनम्रता होती है। इन चीजों से पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है। पॉल ने कुरिन्थियंस के लोगों को लिखा, भगवान की बातें केवल पवित्रता आत्मा जानती हैं और कोई मनुष्य नहीं, और उनसे कहा, गलत इच्छा वाले लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा द्वारा समझी जाती हैं। हम जानते हैं कि वे लोग भगवान के शत्रु होते हैं जब तक वे पवित्र आत्मा का पालन नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें छोटे बच्चों की तरह बनना होगा, विनम्र, प्यार से भरे हुए, प्रभु की सभी आदेशों की पालन करना, जिस तरह एक बच्चे अपने पिता के बातों को मानता है। द लिटिल प्रिंस नाम की कहानी में एंटोन डे सेंट एक्स्यूपेरी एक छोटे लड़के के भ्रम के बारे में बताते हैं, जो फूल है उसके पास और जिसकी देखभाल उसने बहुत प्यार से की है, वो बहुत साधारण है। फिर वो समझा कि जो बात उसके फूल को अनोखी बनाते हैं वो उसका प्यार है और उस समय है जो उसने फूल को दिया है। उसने समझा, लोग 5,000 गुलाब एक बगीचे में लगाते हैं और वो नहीं पाते हैं जो वो चाहते हैं, और जो वो चाहते हैं वो एक ही गुलाब और थोड़ा पानी से पाया जा सकता है, पर उन्हें अपने दिल से ढूंढना पड़ेगा। हमारा भगवान का ज्ञान इस पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितना जानते हैं। गॉस्पल का सभी ज्ञान जो आवश्यक है वो कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मिशनरी संदेशों में है। भगवान को समझने के लिए हमें अपने दिलों को खोलने की जरूरत होती है, ताकि हम इस सच्चाई की गवाही दे सकें। भगवान की गवाही का मतलब होता है उनके होने का ज्ञान होना, इसको अपने दिल में महसूस करना कि वे हमसे प्यार करते हैं। ईसा मसीह को अपनाने और उनके आदेशों का पालन करना, भगवान और दूसरों की मदद करना, इससे हम ईसा मसीह की गवाही दूसरे लोगों को दे सकते हैं। ये सिद्धांत हमारे वार्ड्स और ब्रांचेस में सिखाया जा सकता है और सिखाना जाना चाहिए। चर्च के शिक्षकों का प्रथम लक्ष्य लोगों के दिलों को पवित्र आत्मा से छूना होना चाहिए। एक अच्छा संदेश में कई चीजों की जरूरत नहीं होती, पवित्र आत्मा को लोगों की जिंदगी में लाना चाहिए। जब लोग इन संदेशों को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, तब वे अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा पाएंगे और इन चीजों को अपनी जिंदगी में इनसे खुश हो पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपने दिलों को छोटे बच्चों की तरह बनाएंगे और भगवान के शब्द को सुनेंगे और पालन करेंगे। मैं गवाही देता हूँ कि हम अगर ये करेंगे तब हम भगवान की अनोखी और शांति देने वाली बातों को पा पाएंगे, जिससे हम अपनी जिंदगी को खुश बना पाएंगे और आनंद जीवन प्राप्त करेंगे। ईसा मसीह के नाम में आमेन।
शुरुआत में शब्द था, शब्द भगवान के पास था और शब्द भगवान था, उसमें जीवन था और जीवन ज्योति थी इंसान की। उन्होंने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मसीह जो प्रभु है। हाँ, मैं हूँ शुरुआत और अंत, दुनिया का मुक्तिदाता। उन्होंने कहा, जो कोई मैंने दिया हुआ जल पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक कुआं बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं जाएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उन्होंने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुकरण करेगा अंधेरे में नहीं चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। उन्होंने कहा, पुनर्जीवन मैं हूँ और जीवन भी, जो मुझ पर विश्वास करेगा चाहे मरे फिर भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा। उन्होंने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इंसान अपने आप पिता तक नहीं पहुँच सकता, सिर्फ मेरे द्वारा। यीशु मसीह ही मार्ग है, वो रोशनी और जीवन है, रोटी और पानी, शुरुआत और अंत, पुनर्जीवन और जीवन, दुनिया का उद्धार करता, सच्चाई और मार्ग। सिर्फ एक मार्ग है खुशियों और समाधान के लिए, वही मार्ग है। हर दूसरा रास्ता, कोई दूसरा रास्ता चाहे जो भी हो, पागलपन है। वो जीवित पानी का कुआ पेश करता है, या तो हम पीकर सदा के लिए प्यास बुझाएं या मूर्खों जैसे सदा प्यासे रहें। वो जीवन की रोटी है, या तो हम उसे खाए और सदा के लिए भूख मिटाए या मना करें और सदा भूखे रहें। वो इस दुनिया की रोशनी है, या हम उनका अनुसरण करके साफ देख पाएंगे या मूर्खों जैसे अंधे रहेंगे सदा अंधकार में। वो पुनर्जीवन है और जीवन भी। उन्होंने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी, और हम उनके बारे में सीखेंगे और संतुष्ट जीवन पाएंगे, या मूर्खों जैसे सदा मुर्दा रहेंगे। वो दुनिया के उद्धार करता है, या हम उनकी शांति पूर्ति का उपहार माने गए और साफ और पवित्र बनकर उनकी आत्मा के लायक बनेंगे, या हम मूर्खों जैसे सदा गंदे रहेंगे। हम विश्वास करते हैं भगवान पर जो अनंत पिता है, और उनके पुत्र यीशु मसीह पर और पवित्र आत्मा पर। पिता की योजना स्वीकार करके उनके पुत्र ने वो अमल में लाई ताकि हम पवित्र आत्मा मिले। पिता का रास्ता बेटे का भी रास्ता है। उन्होंने कहा, तुम किसी और भगवान की पूजा नहीं करोगे। सिर्फ भगवान हमें पोषण दे सकते हैं, सिर्फ वो दिल के धड़कन और हमें सांस दे सकते हैं, सिर्फ वो हमें बचाकर सुरक्षित रख सकता है, सिर्फ वो शक्ति दे सकते हैं जीवन की बोझ उठाने के लिए। सिर्फ वो शक्ति ज्ञान शांति और सुख दे सकते हैं। सिर्फ वो समाधान कर सकते हैं। सिर्फ वो इलाज कर सकते हैं। सिर्फ वो भट्टी में हड़ के हमें दिव्य बना सकते हैं। सिर्फ वो सब ये करेंगे और कुछ भी। सिर्फ हमें उनके याद करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन। फिर हम क्या करें? हम उन्हें याद करेंगे और उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये एक ही समझदार बात है। जॉन ने कहा, उसने पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। इस जीवन में कोई भी बात पवित्र आत्मा के दिव्य वरदान से श्रेष्ठ नहीं है। वो स्त्रेत है सुख का, खुशी का, शांति का, ज्ञान का, शक्ति का और हर अच्छी बात का। वो शक्ति है जिसके द्वारा हमारा परिवर्तन होता है और हम शक्तिशाली बनते हैं जबकि हम दुर्बल थे। वो शक्ति है। हर अच्छी बात पवित्र आत्मा के वरदान पाने पर आधारित है। और उसे अपने साथ रखने पर सब बातें इस पर निर्भर हैं। इस उद्देश्य से यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में गया। वहां उन्होंने हमारे पापों पर काबू पाया, हमारे पाप खुद पर लिए, हमारे पापों की सजा भुगती, हमारा शिक्षण की कीमत अदा की। मुझे नहीं पता उन्होंने जो किया कैसे किया। मुझे सिर्फ पता है कि उन्होंने वो किया। हमें और तुम्हें इसलिए समाधान मिलता है कि हम उनकी शक्ति पा सकें। तो फिर हम क्या करें? हम अपने ऊपर उनके बेटे का नाम ले सकते हैं, उसे हमेशा याद रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा सदा हमारे साथ रहे। सब कुछ इस पर निर्भर है। दुनिया का एक प्रचलित धारणा है कि जीवन अपनी तरीके से जियो, अपनी खुद की मनमानी करो, मत बदलो, दूसरों की मत सुनो। प्रभु कहता है, मैं मार्ग हूँ। उन्होंने कहा, मेरा अनुकरण करो। उन्होंने कहा, तुम किस तरह के व्यक्ति बनोगे? मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मेरे जैसे। हम गलत में शायद सोचे कि हम उनका अनुसरण नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जीवन का स्तर इतना ऊंचा है कि पहुंचना असंभव है। हम शायद सोचे मार्ग काफी मुश्किल है, इतना ऊंचा कि हमारी हद के बाहर है, कम से कम अब के लिए। इस पर विश्वास मत करो। प्रभु का स्तर सबसे ऊंचा है, पर यह कभी न मानना कि सिर्फ कुछ लोग वहां पहुंचेंगे। इस एक उदाहरण में हमारे जीवन के अनुभव हमें बहकाते हैं। हमारा अनुभव कहता है सबसे ऊंची मंजिलें इंसान के प्रयास में सबसे मुश्किल है और इसलिए सिर्फ वो लोग कुछ लोगों को समर्थ होगी। जितनी ऊंची मंजिल उतने कम लोग पहुंचेंगे। ये लागू नहीं है क्योंकि जिंदगी के दूसरे अनुभवों जैसे ये इंसान का प्रयास नहीं है लेकिन ये भगवान का काम है। हाँ, उनका कार्य और गौरव है इंसान को अमर बनाना और उसे अनंत जीवन दिलाना। जैसा और कुछ नहीं है, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। ऐसा कोई और प्रयास नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसी योजना नहीं या ऐसा प्रबंध इंसान ने कभी सोचा है जिससे इंसान मसीह की मुक्ति दिलाने वाली और परिवर्तन करने वाली शक्ति और पवित्र आत्मा को वरदान पा सकता है। इसलिए प्रभु का निमंत्रण उनके अनुसरण करने का सबसे उच्च है, पर सब पा सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम कर सकते हैं लेकिन इसलिए कि वो कर सकता है हमें। हमारा विश्वास है कि मसीह की शांति पूर्ति द्वारा सभी इंसान जीवित और मुर्दा बचाए जा सकते हैं सुसमाचार की आज्ञाओं और विधियों के पालन द्वारा। प्रभु का मार्ग कठिन नहीं है, जीवन कठिन है, सुसमाचार नहीं। हर काम में विरोध स्वाभाविक है, हर जगह सबके लिए। जीवन हम सभी के लिए कठिन है, पर जीवन सरल भी है। सिर्फ दो चुनाव हैं, या तो प्रभु का अनुसरण करके उनकी शक्ति का वरदान पालें, शांति, रोशनी, बल, ज्ञान, मार्गदर्शन, प्यार और सुख पाओ, या हम दूसरा मार्ग चुनें, कोई भी दूसरा, जो भी रास्ता हो, खुद की मनमानी करो, उनके सहारे बिना, उनकी शक्ति बिना, बिना मार्गदर्शन के, खलबली में, शंका में, दुख और उदासी में। मैं पूछता हूँ, कौन सा मार्ग आसान है? प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, आप सभी श्रम करने वालों, जिनके बोझ भारी हैं, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, और तुम्हारी आत्मा को आराम मिलेगा। मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ हल्का। जीवन कठिन है, पर सरल भी है। मार्ग पर आ जाओ और हार कभी मत मानो, कभी भी नहीं। हार मत मानो, सिर्फ लगे रहो, मार्ग मत छोड़ो और तुम मंजिल पे पहुंच जाओगे। सिर्फ एक मार्ग है खुशियों और समाधान के लिए, यीशु मसीह वो मार्ग है। हर दूसरा मार्ग, कोई भी अलग मार्ग, जो भी हो, पागलपन है। मैं उनकी गवाही देता हूँ, यीशु मसीह की, कि वे जीते भगवान के पुत्र हैं, जीवन की रोटी, सच्चाई, पुनर्जीवन और जीवन, दुनिया बचाने वाला और दुनिया की रोशनी, वो रास्ता है, वही रास्ता है, एक ही रास्ता। हम होशियार बने, हम उनका मार्ग चुने, यही एक बुद्धिमान रास्ता है। उनके पवित्र नाम में यीशु मसीह, आमेन।
भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा, सभी समय परमेश्वर के लोगों ने जायन को बनाना चाहा। प्रोफेट्स, प्रिस्ट और राजाओं ने भी ये चाहा कि अंतिम दिनों में हमें मिले, लेकिन ये दिन देखने से पहले वो गुजर गए। हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इन आखिरी दिनों के लिए चुना है। जायन जगह और लोग भी है। पहले जायन इनोक का शहर था। उन्होंने एक शहर बनाए जिसे पवित्र का शहर कहा गया, जो जायन था। ये जायन लगभग 365 वर्षों तक का था। धर्मशास्त्र कहता है, इनोक और उनके लोग परमेश्वर के साथ चले और वो उनके बीच रहा। फिर जायन परमेश्वर के अपने पास ले गया। फिर जरूशलम जायन नाम का मंदिर था। धर्मशास्त्र भविष्य में नई जरूशलम की बातें करते हैं, जहां मसीह 1000 साल राज्य करेगा। प्रभु ने इनोक के लोगों को जायन कहा, क्योंकि वो एक दिल और मन के थे और धार्मिक थे, और उनमें कोई गरीब नहीं था। और उन्होंने कहा, पवित्र दिल के वाले जायन, पवित्र दिल वाले जायन होते हैं। जायन प्रतिपक्ष और विरोधी बेबीलोन है। बेबीलोन शहर आरंभ में बैबल था। बैबल टावर ख्याति और बाद में बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी बनी। उसकी मुख्य इमारत बेली और बाल के मंदिर थी, जिस मूर्ति को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा शर्म, क्योंकि जो कम उसकी आराधना से संबंध था। उसकी संस्कृति, उसकी अशुभ आराधना
और 587 BC की विजय के बाद जूदा को बांधी स्थिति देना, सभी मिलकर नैतिक पतन समझाओ और अध्यमित गुलामी का संकेत करना है। इस निष्फलता के साथ प्रभु ने अपने गिरजाघर के सदस्यों से कहा, बेबीलोन से बाहर निकलो, अन्य देशों के इकट्ठा हो, चारों दिशों से स्वर्ग की एक ओर से दूसरी ओर तक। इस इकट्ठा कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गिरजाघर के एल्डरों को नियुक्ति किया कि वो दुनिया भर जाएं और उसकी प्रारंभ के लिए आज पूरी प्रबलता से लगा हुई। और देखो, सभी लोगों के लिए ये उनकी पुकार होगी और प्रभु की आवाज़ होगी, जायन के देश जाएगी कि मेरे लोगों की सम्मान बंधेंगे और उनके स्टेक्स मजबूत हो और जायन अपने आसपास के क्षेत्रों में जाए। और आज प्रभु के लोग इकट्ठा हो रहे हैं अन्य देशों के शहर, जैसे वो अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर की धर्म सभाओं और उसके स्टेक्स में इकट्ठे हो रहे हैं जो अन्य देश में बिखरे हैं। प्रभु हमसे कहता है कि आज जायन की सुरक्षा और उनकी आवश्यकताओं के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए धार्मिक के आदर्श उदाहरण बनाए। वास्तव में मैं तुम सभी से कहता हूँ, उठो और रोशनी आगे दिखलाओ कि तुम्हारी रोशनी देशों के लिए आदर्श हो और जायन के देश उसके स्टेक का इकट्ठा होना सुरक्षा के लिए हो और आंधी से शरण पाने के लिए और उसके क्रोध से बचने के लिए जब वो आएगा पूरी पृथ्वी पर। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के कार्य में गिरजाघर के शुरू संदेशों ने मिजरी में जायन के केंद्र स्थान संपत्ति करने की कोशिश की। उनमें असंगति और कला और ईर्ष्या और संघर्ष और कामुक और लालची इचालिन थी। इन शुरुआत के संतों पर कठोरता से न्याय करने की जगह फिर भी हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्या हम क्या कर रहे हैं। उसके नागरिकों के स्वरूप गन और वफादारी के कारण जायन ही है। याद रखिए, प्रभु ने अपने लोगों को जायन कहा है क्योंकि वो एक दिल और एक मन के थे और धार्मिक थे और उनमें कोई गरीब नहीं था। अगर हमारी इच्छा है अपने घरों, शक्लों, वार्ड और स्टेक में जायन की स्थापना करने की, हमें इस आदर्श की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये आवश्यक होगा कि एक दिल और एक मन से संगठित रहें व्यक्तिगत रूप और सामूहिक रूप से पवित्र लोग बना और उन गरीब और निर्धन लोगों की पर्वत हम उस समय का इंतजार नहीं कर सकते कि जब जायन आएगा तब ये चीजें होगी, जब वो होगी तब जायन आएगा। जब हम जायन को विजिट होंगे, होने की एकता की जरूरत पर सोच विचार करें, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम असंगतियों, कलाओं, ईर्ष्या और संघर्षों पर काबू पा चुके हैं। हम एक दिल और मन के तब बनेंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता को अपने जीवनों का केंद्र मनाएंगे और उनका पालन करेंगे जिन्हें उन्होंने अधिकार दिया है हमारे नेतृत्व करने के लिए। एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह में हम प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हम तुम तक मसीह के सच्चे प्यार के साथ पहुँचते हैं और तुम्हें पूरी सहभागिता में स्वागत करते हैं, जिनकी आत्मा हर हार गई है या जो संघर्ष कर रहे हैं और बेलिब है। हम कहते हैं हम तुम्हें आनंद बनाए और प्रसन्ना और तुम्हारे भाइयों को दूर करें। इस वर्ष जुलाई के अंत में यूरोप के पवित्र पूर्वी भाग के लोग देशों के जवान अविवाहित बालिक सम्मेलन के लिए बुदपेस्ट हंगरी के पास इकट्ठा हुए। इस दल में मोल्दोवा के बीच जवान पुरुष और महिले थे। मोल्दोवा के ये जवान बालिक साथ में हुए और योजनाओं को बनाने ताकि कम से कम उनका एक दल प्रत्येक कक्षा में हो और विस्तृत टिप्पणियों को ले सके। ये उदाहरण सबसे सरल प्रकार की एकता और प्यार प्रदर्शित करता है। अगर बिना तारीखों से हजारों बार दोहराया जाए, फिर जायन लाएगा। जायन बनाने के कार्य में हमारे हृदय पवित्र होना चाहिए। जायन सिर्फ अच्छाइयों के सेलेस्टियल किंगडम के नियमों से बन सकता है। सेलेस्टियल किंगडम के नियम सिद्धांत के नियम है। हमें उद्धारकर्ता को याद करना चाहिए और उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए। कुछ संतों की बुरी इच्छाओं से उद्धारकर्ता निराश थे। ये लोग उस दुनिया में थे जहां दूरदर्शन, इंटरनेट, आईपॉड नहीं थे। अभी की दुनिया में क्या हम बुरी इच्छाओं और उनके साथ जो पाप हैं उनसे मुक्त है? शलीन कपड़ों की सीमाओं से दूर होने या अश्लील चित्रों की प्रतिनियुक्त अनेकता में मांग होने की जगह हमें धार्मिक तलाश करनी चाहिए। जायन में आने के लिए तुम्हारे या मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है कि दूसरों से कुछ कम पापे हो। हमें सिर्फ अच्छा ही नहीं बनना है पर पवित्र पुरुष और महिला बनना है। एल्डर नील मैक्सवेल के कथन को याद करते हुए हम हमेशा के लिए सुषमाचार में अपने आप को अर्पित करें और दुनिया की चीजों से दूर रहें, क्योंकि इतिहास भर कितनी अच्छी तरह से उन्होंने गरीबों की सेवा की है। उसी के द्वारा प्रभु ने समाजों और व्यक्तियों पर न्याय किया है। और भी वो घोषित करते हैं तुम्हारी सांसारिक चीजों में तुम्हारी बराबर होना चाहिए और ये अनिच्छा से नहीं तो पवित्र आत्मा के विश्वरूपों की प्रचुरता को रोक लिए जाएंगे। अपने साधनों और अपनी संपत्तियों के इस्तेमाल पर हम नियंत्रण करते हैं पर संसारिक चीजों के ऊपर इस प्रबंधक पद के लिए हम ईश्वर को उत्तरदायी हैं। तुम्हारी उदारता की गवाही करना सुखद है जब तुम उपवास बैठो और लोभकारी परियोजनाओं में याद देते हो। कई वर्षों में क्रोधों के कष्टों को दूर किया गया है और संतों की उदारता द्वारा कई लोग अपने आप की मदद कर सकते हैं। फिर भी जब हम जायन के मार्ग पर बड़े हैं। हम प्रयक्त को प्रार्थना के साथ विचार करना चाहिए कि क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और गरीब और निर्धनों के लिए जो सब हमें करना है, जैसे प्रभु प्रत्याशा करते हैं। हम शायद अपने आप से पूछें, जैसे हम कई उन समाजों में रहते हैं जो संपत्तियों और सुखों की आराधना करते हैं, क्यों ना चाहे हम लालीचपन और कामुक से अलग रहते हैं, ताकि इस दुनिया की और भी चीजों को प्राप्त कर सके। शायद हम उसके साथ संतुष्ट हो जो हमारी जरूरत के लिए प्राप्त है। उन्होंने कहा, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। दुनिया के कई भागों में हम आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जितनी अच्छी तरह से हो सके हम एक दूसरे के देखभाल करें। मुझे वियतनाम के एक परिवार की कहानी याद है जो 1975 में साइगोन से भागे थे और प्रोवो यूटा के एक छोटे गतिशील में आकर रहते थे। शरणार्थी परिवार के एक जवान पुरुष ब्रता जॉनसन के घरेलू शिक्षण साथी बना, जो पास में अपने एक बड़े परिवार के साथ रहते थे। लड़के ने दिए गए का वर्णन किया। एक दिन भर्ता जॉनसन ने देखा कि हमारे परिवार के पास कोई रसोई में नहीं थी। वो दूसरे दिन आया एक अनोखी पर रसोई में खाना लेकर। मैं आंखें अनोखी खे रहा हूँ क्योंकि मैं की सिर्फ दो पैर में की ऊपरी भाग में मिल रहे थे। जल्द ही हम इस अनोखी मेज का इस्तेमाल दैनिक रूप से भोजन तैयारी और कुछ भोजन को करने के लिए करने लगे। हम अपने परिवार भोजन को फर्श पर बैठे कर सके, एक सच्चे वियतनाम के ढंग से। यह स्पष्ट था कि जॉनसन परिवार के लिए ये मेज छोटी थी। संभवतः आरंभ से वो मेज भी छोटी थी उनके लिए, जब उसका दो टुकड़ा नहीं हुआ था। मेरे जीवन भर इस तरह की का कृपालु कार्य मेरे लिए सच्चे दान की शक्तिशाली अनुमासरक था। हम पुनस्पत्ता पर न्याय अनुसार हर्षित हैं। भविष्य जोसेफ स्मिथ ने कहा, जायन बनाना हमारा महान लक्ष्य होना चाहिए। हमारे परिवार और स्टेक में हम एकता, धर्मपरायणता और परोपकार द्वारा जायन को बनाने के मार्ग ढूंढे। उस महान दिन की तैयारी करें जब जायन नया जरूशलम प्रकट होगा। अपने इस भजन के शब्दों में, इज़राइल इज़राइल ईश्वर पुकार रहा है, तुम्हें उदासी की दुनिया से पुकार रहा है, महान बेबीलोन का पतन हो रहा है, ईश्वर उसके सभी किलाओं को गिरा देगा। जायन आए और उसके द्वारों के अंदर हर्षित हो। जायन आए क्योंकि तुम्हारा आना प्रभु की निकट है।
For your coming, Lord, is nigh.
मैं यीशु मसीह के नाम से जायन के राज्य की गवाही देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हम भ्रातों को महापुरोहित सभा की याद दिलाते हैं जो सम्मेलन केंद्र में शाम 6 बजे माउंटेन डेलाइट समय में शुरू होगा। देश में टेबनेकल क्वायर ब्रॉडकास्ट कल सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक माउंटेन डेलाइट समय होगा। सम्मेलन की रविवार सुबह की सुबह उसके बाद होगी। हम प्रतिनिधिक गायन मंडली को सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे उन्होंने इस शाम प्रदान किया। उसके भाषण के बाद गायन मंडली गाएगी वी थैंक द गॉड। 70 के बाद फॉर प्रॉफिट 70 के एल्डर डॉन आर क्लार्क द्वारा प्रार्थना की जाएगी।
My message in the last general conference focused.
पिछले समय मेरा संदेश सुसमाचार संदेश पर था कि जो प्रार्थना में विश्वास से मांगना। आज मैं तीन अधिक संदेश पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना के पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना की। सिद्धांत एक, प्रार्थना और भी बनती है जब हम अपने सभी कार्य को प्रभु के साथ सलाह करते हैं। सरलता से बतलाया गया प्रार्थना स्वर्ग पिता से संचारण करना जो पृथ्वी पर उनके पुत्र पुत्रियों करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति करते हैं तब प्रार्थना हमारी तरह है। हमें आदेश दिया गया है कि पुत्र के नाम से हम पिता पर प्रार्थना करें। हम वादा किया कि अगर हम से प्रार्थना करेंगे उसके लिए तो उचित होगा। सही है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें आशीर्वाद सुरक्षा और मिल सकती है। ईश्वरी वचन संचरण है कि स्वर्ग पिता अपने बच्चों के पृथ्वी पर करते हैं। जब हम विश्वास से मांगते हैं हम ईश्वर के वचन और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और रेशमे और शांतिमय चीजों के जान सके और जो आनंद और आनंद जीवन लाती है। रेश और वो मालूम है जिन्हें सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जान और समझ सकते हैं। पिता और पुत्र के ईश्वर वचन ईश्वरता के तीसरे संदेश द्वारा दिया जाता है जो पवित्र आत्मा है. पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के गवाही और दूत है. कैसे प्रार्थना को अर्थपूर्ण बनाया जाए जो हमें समझने में मदद करने के लिए पृथ्वी के स्तुति करे और ईश्वर द्वारा इस्तेमाल करे की. मोसेस के तीसरे अध्याय में सीखते हैं कि सभी चीजों को आत्मिक तौर से बनाया गया है. और अब देखिए, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये स्वर्ग के पृथ्वी के पीढ़ियों हैं जब उनकी स्तुति की गई थी और दिन जब में प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था. और खेत की प्रत्येक पौधा इसी पहले वो पृथ्वी पर थे और की प्रत्येक जलती भूटती उन्हें पहली. मैं प्रभु परमेश्वर ने सबसे चीजों की स्तुति की जिसके बारे में मैंने कहा आत्मिक रूप से इससे पहले वो पृथ्वी पर वास्तु थे. इन चौदों पे सीखते हैं कि सांसारिक स्थिति पे पहले आत्मिक है और दिन की कार्यों के पहले होनी चाहिए. जैसे सांसारिक स्थिति और आत्मिक स्थिति के जुड़ी हुई और उसके पुनर्वर्म है जुड़ी है और इसके द्वारा पुनरारंभ है.
And a continuation of the spiritual creation. So meaningful morning and evening prayers.
इस उदाहरण पर विचार कीजिए. कुछ चीजें हमारे चित्रता, हमारे आचरण, ये हमारे आध्यात्मिक विश्वास से संबंधित होगी जिनके बारे में हमने सुबह की प्रार्थना में स्वर्ग पिता से सलाह करने चाहिए. जो आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके लिए उचित रूप से धन्यवाद करने के बाद हम मार्गदर्शन और चीजों के मदद के लिए निवेदन करने जिन्हें हम अपनी शक्ति और नहीं कर सकते हैं. उदाहरण के रूप में जब हम प्रार्थना करने कि हम शायद उन आश आवर्ष को प्रकाश डालें जब हमें उनसे खतौरता को उचित रूप से बात की हो. जानने की हम इस इच्छा जाने की पर हमें हमेशा उनके अनुसार नहीं कर सकते. अपनी कमजोरियों के लिए हम अपने स्वर्ग प्रगति को भी सच्चाई के त्याग ना कर सकते हैं. निर्भय करने के पूर्णता और अपने जीवन को उधारकर्ता के जीवन की तरह बनाए. अच्छाई करने और अच्छा बनने के लिए अधिक शक्ति के लिए निवेदन करने. हमारे दिन के आत्मिक तैयारी के लिए तरह सी मुख्य भाग है. दिन में हम अपने दिल में लगातार सहायता की महसूस कर सकते हैं. जैसे अल्मा ने सुझाव दिया, तुम्हारे सुझाव विचार प्रभु के आधार पर हो. हम ध्यान देते हैं कि इस विशेष दिन में कुछ अक्षर होते हैं जहां आत्मा पर हमारा है, पर हम ऐसा नहीं करते. हम स्वर्ग मदद और शक्ति को समझते हैं और विनम्रता और अपनी प्रार्थना के जवाबों को पहुंचते हैं. पहचानने के समय में हम आभार के साथ प्रार्थना करते हैं. अपने दिन की संपत्ति पर हम भी अपने घटने पर होते हैं और अपने पिता से प्रार्थना करते हैं. हम दिन की घटनाओं की समीक्षा करते हैं और जो आशीर्वाद मदद हम प्राप्त करते हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं. हम पश्चाताप करते हैं प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता के कल हम कैसे और अभी अच्छा है और कैसे अच्छा बन सकते हैं. और हमारी शाम की प्रार्थना सुबह की अर्पण प्रार्थना की तैयारी है. सुबह और शाम की प्रार्थना और बीच के सभी प्रार्थनाओं संबंधित जुड़ी हुई घटनाएं हैं और वो प्रत्येक दिन की दिनों, हफ्तों, महीनों और वर्षों तभी संबंधित है. हमेशा प्रार्थना करने कि धर्मशास्त्र संबंधी चेतावनी की पुत्री हम करते हैं इस तरह की प्रार्थना. प्रार्थना अर्थपूर्ण बन जाती है जब हम ईश्वर को अपने संबंध को याद करते हैं और ये चेतावनी पर ध्यान देते हैं. हाँ सभी सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारो, अपने सभी कमरों के प्रभु के लिए करो, और जहाँ भी जाओ वहाँ प्रभु के लिए जाओ। तुम्हारे सभी विचार प्रभु के आधार हो, और तुम्हारे हृदय के प्रेम सदैव के लिए प्रभु पर हो। अपनी सभी बातें के लिए प्रभु से राय लो, और वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे निर्देश करेगा। रात को जब तुम विश्राम करने को जाओ, तब परमेश्वर का स्मरण करो, जिससे कि वो सोते समय तुम्हारी रक्षा करे, और जब भूर को उठो तो परमेश्वर की प्रति तुम्हारे हृदय कर्तव्य या भरा रहे। और अगर तुम्हें ये सब किया, तब अंतिम दिन में तुम्हें उठा लिया जाएगा। सिद्धांत दूसरा, प्रार्थना और भी अंतर्पूर्ण हो जाती जब हम उसके अधिक कर्तव्य अभित करते हैं। ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी आइडाहो में हमारी सेवा के समय बहन बैठना और मैं अब बारंबार महाअधिकारों को अपने घर पर लिए और महसूस करता, और अपने प्रार्थनाओं के बारे में हमारे परिवार ने एक आवश्यक सबक सीखा जब हम 12 के सर्व के साथ घुटने में प्रार्थना किया। उस दिन कुछ समय पहले सिस्टर बेडनर ने प्यारे दोस्त के उपस्थित मौत की सूचना की, और हमारी तलिक इच्छा थी कि बचने हुए शांति और बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जब मैंने अपने पत्नी को प्रार्थना के लिए बुलाया, 12 के सदस्य जो उस झुंड घटना के प्रस्तुत थे, उसके सलाह में एल्मा की आदेश के समय था कि जो उन्होंने प्राचीन गिरजाघर के सदस्य को दिया था कि लगातार प्रार्थना किया और एक बात में कर्तव्यता प्रकट किया। दुग्ध घटना में धन्यवाद अभिक्ता करने के जगह शुरू में अपने दोस्तों के लिए आशीर्वाद के लिए अरोड़ करना। बहन बेटना ने विश्वास में जवाब दिया और निर्देशन में जो उसके प्राप्त हुआ उसने प्रिय दोस्त के आदरपूर्ण और समर अर्मों किया लिया। स्वर्ग पिता की धन्यवाद। पवित्र आत्मा के तोहफा के लिए सिद्धार्थ आभार प्रकट किया और हमें विपत्ति समय दिए। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उसने उदाहरण की योजना में यीशु मसीह के प्राश्चित बलिदान, उसके पुनर्जीवन, उसके पुनर्स्थापित समाचार के धर्म विधियों और वादों के लिए कर्तव्य अभिहित किया। हमारे परिवार ने आंतरपूर्ण प्रार्थना में कर्तव्य की शक्ति पर उस अनुभव से इस महान सब सीखा। उस प्रार्थना के कारण और उसके द्वारा कई वर्षों पर हमारा परिवार को प्रेरणा और आशीर्वाद मिला जो हमारे लिए चिंता था। हमें सीखा कि खुशियों के योजना और उसके प्रति उद्धारकर्ता के लक्ष्य के लिए हमारी कर्तव्य से हमें जरूरी आश्वासन है। हमें अंतर्दृष्टियां भी मिली कि संबंधिति की चीजों पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए और विश्वास से उचित रूप से चीजों के लिए। सबसे अंतपूर्ण और अधिकारिक प्रार्थना जिन्होंने मैंने अनुभव किया उनमें कई धन्यवाद की थी और थोड़े अनुरोध। अब मुझे आशीष मिला कि अपोजल्स और भविष्यवक्ताओं के साथ प्रार्थना करो। उद्धारकर्ता के गिरजाघर के आधुनिक नेताओं में मैं पाता हूँ वही जो मोर्नाई की पुस्तक में कैप्टन मोर्नाई ने वर्णन की। ये वे पुरुष हैं जिन्हें हृदय ईश्वर के धन्यवाद करने के लिए भारी हैं, और कई वर्ष अंधकार और आशीर्वादों के लिए जिन्होंने वो अभी लोगों ने किया। भविष्यवक्ताओं की प्रार्थनाओं अपनी सरलता में बचाओ जैसी है और सच्चाई की कारण शक्तिशाली। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को भी अंतपूर्ण बनी है। हमें याद रखना है कि मानव ईश्वर को दोषी मैं सिफारिश करूं कि समय समय पर तुम और हम अंतपूर्ण करते हैं, जिसमें हम सिर्फ धन्यवाद करते हैं, आभार अभिव्यक्त करते हैं, कुछ और मत मानिए। हमारी आत्माओं को आनंदित होने दीजिए और प्रार्थना करने की अपने दिलों की पूरी शक्ति के आभार अव्यक्त करें। सिद्धांत तीन, प्रार्थना और भी अर्थपूर्ण हो जाती है जब हम सच्चाई अभी और सच्चाई दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता से उन आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके इच्छा हमारी व्यक्ति जीवन में होती है और वे अच्छी और उचित होते हैं। दूसरों को लिए प्रार्थना करते हैं, ये भी अर्थपूर्ण प्रार्थना का आवश्यक हिस्सा है। जैसे बहुत अपनी में भारी आवश्यकता है और मैं वृत्ति हूँ, उसकी तरह दूसरों के लिए अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से प्रार्थना करने से प्रभु की आवाज की सुनो और धन्य की हमारी योग्यता में वृद्धि होती है। मोमन की पुस्तक में हम लेही के उदाहरण से ये सबक सीखते हैं। भविष्यवक्ता आदेश और चेतावनियों पर लेही ने विश्वास से दिखलाई। यरूशलेम की बर्बादी को सम्मत में थी, फिर उन्होंने प्रभु से अपने पूरे दिल से अपने लोगों के लिए प्यार की प्रार्थना की। उसके उत्सित प्रार्थना के जवाब में लेही को ईश्वर और उसके पुत्र का यरूशलेम के बर्बादी को होने से बचा के रास्ता दिया। कृपा ध्यान दे कि दूसरे के लिए प्रार्थना करने के जवाब में ईश्वर वचन आया और व्यक्तिगत अंधविश्वास के अनुरोध परिणाम नहीं था। दूसरों के लिए सच्ची अभीर से प्रार्थना करने के लिए उद्धारकर्ता संबुरी उदाहरण है। उसके महान प्रार्थना में उसके मरने से पहले यीशु ने अपने अपोस्तलों से सभी संतनों के लिए प्रार्थना की। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उनके लिए जो तुमने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे हैं। मैं केवल इनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके भी जो वजन के द्वारा मानस कि जो प्रेम तुझको मुझे था वो उनके रहे और मैं उनमें रहूँ। अमेरिका के महत्व में के प्रचार के समय उन्होंने लोगों के निर्देश किया और वे उनके शिखों पर विचार करने और समय के लिए प्रदान किया। उन्होंने लोगों को चंगाई दी, उन्होंने भाषा की और इस्तेमाल की। उनकी प्रार्थना का प्रभाव बहुत था। जिस समय वो अपने पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था, उस समय हमारी आत्माओं में जो आनंद भरा हुआ था, वैसा आनंद कोई भी अनुभव नहीं कर रहा था। कल्पना कीजिए कैसे हो रहा था उस वक्त जब यीशु मसीह हम के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्या हमारे साथी बच्चे और अन्य परिवार सदस्य उस तरह हमारी प्रार्थना को महसूस करते हैं जो पिता से की जाती है उनके विस्तृत जरूरतों और इच्छाओं के लिए? क्या जिनके हम सेवा करते हैं विश्वास और सच्चाई की साथ सुनेंगे? अगर जिनसे हम प्यार और जिनके हम सेवा करते हैं उन्होंने हमारी सच्चाई प्रार्थना को नहीं सुना और प्रभाव महसूस किया नहीं किया, तब पश्चाताप करने का समय अभी है। जब तुम उद्धारकर्ता के उदाहरण की बारबारी करते हो तो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनो। हमें हमेशा प्रार्थना करने हैं दिलों में, दुनिया के सामने और अकेले में, खुले आम और नीचे रूप से भी। मैं गवाही देता हूँ कि प्रार्थना और भी आदरपूर्ण हो जाती है जब हम प्रभु से सलाह करते हैं अपने सभी कामों के लिए, जब हम हर एक काम के लिए वो करते हैं और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि स्वर्ग पिता की जीवित है, वो प्रत्येक सच्चाई प्रार्थना सुनते हैं देते हैं। यीशु ही मसीह है हमारा उद्धारकर्ता। ईश्वर वचन वैश्विक है। सुसमाचार की पूर्णता इस पुनस्थापित पृथ्वी पर समय हो गई है। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से कहता हूँ, आमेन।
Our dear, kind Heavenly
Father, इस सेक्रेड के हम आपके सामने आते हैं विनम्रता के साथ अपने दिलों में और धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र ईसा मसीह के लिए और उनके एटोनमेंट के लिए हमारे खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं आपको प्रॉफिट के लिए थॉमस एस मॉन्सन प्रेसिडेंट आयरिंग और उगडोर्फ के लिए और सभी अपोस्टलों के लिए धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन ताकि हम अपने हाथ उपत करके उन्हें सस्टेन कर सके
Father, we express appreciation for what
धन्यवाद देते हैं आपको जो हमने पवित्र आत्मा को महसूस किया है आपके उत्तरों हमारे प्रार्थनाओं के लिए जो भी बातें हमने सुनी है उनके लिए और इस समय जो हमें जरूरत है आपकी धन्यवाद देते हैं आपको जो हमने महसूस किया है और जो हमने सीखा है धन्यवाद देते हैं अपने परिवारों के लिए कि हमें हम जानते हैं कि हमारे परिवार इम्पोर्टेंट है और इन मुश्किल की स्थितियों में साथ में रहना जरूरी है और टेंपल की प्रक्रियाओं के लिए धन्यवाद देते हैं इन गाने वालों के लिए और इन युवाओं की पीढ़ी के लिए कि हम उनकी मदद कर सकें भगवान प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीर्वाद दें जिनको आपकी जरूरत है और कि हम फेथ होप और करेज अपने जीवन में ला सकें और हम अपना जीवन आपके तरफ फोकस कर सकें प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे प्रॉफिट और उनके उनको आशीर्वाद दें और प्रार्थना करते हैं आपसे इन चीज़ों के लिए आपके पुत्र ईसा मसीह के नाम में आमेन
This has been a broadcast of the 100th...
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 178 आदेशक महासम्मेलन है ये अंतिम दिनों के सेवा थे गिरजा के गायन द्वारा संगीत प्रस्तुत किया था बोनेविल कम्युनिकेशन द्वारा ये प्रशासन को जानवर से रूप में उपलब्ध किया गया था इस कार्यक्रम के बिना उपलब्ध अनुमति या उत्पन्न अभियान अन्य इस्तेमाल करना मना है